अन्य सभी चीजों का प्रबंध कर लिया गया था, पर युवकों को तेल उबालने के लिए बड़ी कड़ाही नहीं मिल रही थी। खिड़की के दासे पर तीन चाकू, एक छुरा, एक छोटी सी कृपाण साथ साथ जोड़कर रख दिए गए थे। कमरे के एक कोने में 10 लाठियां रखी थीं, जिनके सिर पर पीतल की मूठ और नीचे मेखे गाड़ दी गई थीं। दीवार के साथ एक तीन तीर कमान लटक रहे थे। बोधराज लेट कर बाण चला सकता था, शब्दवेदी बाण चला सकता था, शीशे में अक्ष देखकर बाण चला सकता था, लटकती रस्सी को निशाना बना सकता था। बाणों के सिर पर लगाने के लिए वह धातु की तिकोन नोके बनवा लाया था और अपने साथियों से उनकी संभावनाएं बयान करता रहा था। इसकी नोक पर संखियां रगड़ दें तो यह विषबाण बन जाएगा, इसके आगे मुश्क का फूल लगा दें तो अग्निबाण बन जाएगा, जहां चोट करेगा वहीं आग निकलेगी। नीला थोथा लगा दें तो बाण जहां लगेगा वहीं उसमें से जहरीली गैस निकलेगी। धर्मदेव कहीं से खाली कारतूसों की पेटी उठा लाया था, उसे भी दीवार पर लटका दिया गया था ताकि सभी ओर से शस्त्रास्त्रों का आभास मिलता रहे। रणवीर ने कमरे के अंदर ही दरवाजे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में शस्त्रागार शब्द लिख दिया था, पर वानप्रस्थी जी ने तेल के विषय में जो आदेश दिया था उसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया जा सका था। युवक संघ के सदस्यों में से किसी के भी घर में इतनी बड़ी कड़ाही नहीं थी जिसमें पूरा एक कनस्तर तेल उबाला जा सके। यों तेल का कनस्तर मुहैया करा लिया गया था जो एक ओर दीवार के साथ रखा था। इसके लिए सभी युवकों ने चार चार आने जमा किए थे और बाकी कुछ पैसे बाद में अदा करने का वचन देकर कनस्तर पंसारी की दुकान से उठा लाए थे। तेल की कड़ाही मंदिर में भी नहीं थी जहां आए दिन साबोज हुआ करते थे। तभी संगठन के नायक बोधराज को एक विचार सूझा। कड़ाही हलवाई की दुकान पर से लाई जा सकती है, पर उसकी दुकान पर ताला चढ़ा है। हलवाई रहता कहां पर है? नए मोहल्ले में रहता है। किसी ने उसका घर देखा है? बोधराज ने स्वयं देखा था, लेकिन वह नायक की हैसियत से इस समय यह छोटा काम अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था। तभी रणवीर ने आगे बढ़कर कहा, दुकान का ताला तोड़ दो। युवकों के वदन में झुरझुरी हुई, परंतु सुझाव समय के अनुरूप था। नायक कुछ देर तक छत की ओर ताकता खड़ा रहा। गुट का संचालन बड़ी जिम्मेदारी का काम है, ताला तोड़ते हुए युवक पकड़ा नहीं जाना चाहिए, किसी की नजर उस पर नहीं पड़नी चाहिए। नायक कमसरीट के बाबू मस्तराम का बेटा था और स्थानीय कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। मंडली में यही एक युवक था जो दो जेबों वाली फौजी कमीज पहनता था। हाँ, ताला तोड़ दो, मगर यह काम छिप कर करना होगा। कौन ताला तोड़ने जाएगा? मैं जाऊंगा, रणवीर ने आगे बढ़कर कहा। नायक ने रणवीर को सिर से पांव तक देखा और सिर हिला दिया। तुम्हारा कद छोटा है, ताला ऊपर को लगा होगा तो तुम्हारा हाथ भी नहीं पहुंचेगा। नहीं, ताला नीचे लगा है, मैंने देखा है, मैंने कई बार देखा है। रणवीर बहुत बड़बड़कर बात करता था, नायक को अखरता था, पर लड़का चुस्त भी था, बहुत तेज दौड़ता था, हर काम फुर्ती से करता था, इसमें अनुशासन की कमी थी। नायक मन ही मन जानता था कि रणवीर जैसे भी होगा कड़ाई ले आएगा, लेकिन वह लापरवाही बरत सकता है, कहीं कोई भूल भी कर सकता है जिससे मंडली के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तुम और धर्मदेव दोनों जाओ, नायक ने अपना निर्णय दिया, लेकिन ध्यान रहे किसी को पता न चल पाए कि तुम ताला तोड़कर कड़ाही लाए हो, और उस वक्त जाओ जब सड़क खाली हो, और दोनों एक साथ नहीं जाओ, अलग अलग जाओ। चौराहा पार करने पर ही नाले के पार बाईं ओर हलवाई की दुकान थी। दुकान के पीछे ही रणवीर को कुछ हिलता नजर आया, उसे हलवाई की सफेद पगड़ी नजर आई। तो इसका मतलब है हलवाई आ गया है और दुकान खोलने जा रहा है, पर हलवाई वहीं पर दुकान के पीछे डोल रहा था। क्या बात है, हलवाई वहां पर खड़ा क्या कर रहा है? क्या यह हलवाई है या कोई और आदमी? कोई मलेच्छ उसकी दुकान लूटने तो नहीं चला आया? रणवीर ने ध्यान से देखा, हलवाई ही था, अपनी दुकान का पिछला दरवाजा खोल रहा था। सड़क खाली थी, इस समय सड़क यूं भी खाली रहती थी, कोई इक्का दुक्का खोमचे वाला आ जाए तो आ जाए, या कभी इक्का दुक्का तांगा। इस सड़क पर केवल शाम के वक्त की रौनक होती थी। दोनों युवक बारी बारी से सड़क पार कर गए। तुम उसे बातों में लगा लेना, मैं अंदर से कड़ाई उठा लाऊंगा, रणवीर ने कहा। इसकी जरूरत ही नहीं होगी, वह हमारा हिंदू भाई है, अपने आप दे देगा। मैं उससे कड़ाई मांगूंगा, तू नहीं मांगना। चल बे चल बौने, तू अपने को समझता क्या है? पीछे की ओर से दोनों युवक दुकान की ओर बढ़े। दुकान का दरवाजा खुला था, पर हलवाई बाहर नहीं खड़ा था, वह जरूर अंदर चला गया होगा। सड़क के किनारे रहते हुए भी दुकान के अंदर अंधेरा था। तेल और घी और मैल से चीकट तख्तों पर मक्खियां भिन-भिना रही थीं। दुकान के अंदर से समोसों की बू आ रही थी। रणवीर ने अंदर से झांक कर देखा। क्या है? अंदर से आवाज आई, आज दुकान बंद है। दोनों युवक अंदर दाखिल हो गए। एक ओर को खड़ा हलवाई मैदे का टीन बोरी में उड़ेल रहा था। दरवाजे के बाहर सहसा किसी का चेहरा देखकर ठिठक गया था। आओ आओ, हलवाई ने मुस्कुरा कर कहा, आज कुछ भी नहीं बनाया, मैंने सोचा थोड़ी रसद निकालकर घर लेता जाऊं, शहर की हवा अच्छी नहीं है। बेटा तुम्हें भी घर बैठना चाहिए, बाहर नहीं घूमना चाहिए। उठा लो वह कढ़ाई, रणवीर ने धर्मदेव को हुक्म दिया। धर्मदेव पिछली दीवार के साथ लगी कढ़ाइयों की ओर बढ़ा। जात की रक्षा के लिए कढ़ाई ले जाई जा रही है, संकट समाप्त होने पर लौटा दी जाएगी। बात हलवाई की समझ में नहीं आई। क्या बात है, कौन हो तुम, किस लिए कढ़ाई की जरूरत पड़ गई है, क्या कोई शादी ब्याह है? पर दोनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बीच वाली कढ़ाई उठा लो, वह सामने रखी है, रणवीर ने फिर कहा। ठहरो ठहरो, बताओ तो बात क्या है, किधर ले जा रहे हो कढ़ाई, बाद में पता चल जाएगा, उठाओ जी कढ़ाई। वाह, ऐसे भी कोई करता है, न पूछा न मांगा, अपने आप कढ़ाई उठा ली। पहले बताओ बात क्या है, कौन हो तुम? तभी रणवीर ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और फिर चिल्लाकर बोला, तुम नहीं दोगे कढ़ाई, और वह उछला। पेशतर इसके कि हलवाई कुछ कहे, उसके दाएं गाल पर खून की धार बह रही थी। एक बार उछलने के बाद रणवीर का हाथ फिर कुर्ते की जेब में चला गया था। हलवाई दोनों हाथों से चेहरा ढांपे पैरों के बल हाय हाय करता बैठ गया। खून की बूंदें बराबर उसके गाल पर गिर गिर कर फर्श पर पड़ रही थीं। इस बात का किसी को पता न चले, वरना कत्ल कर दिए जाओगे। धर्मदेव कढ़ाई उठाए नाला पार कर गया था। रणवीर थोड़ा ठिठक कर उससे थोड़ी दूरी पर आने लगा था। रणवीर सोच रहा था, मारना मुश्किल नहीं है, इसे मैं आसानी से कत्ल कर सकता था। हाथ उठाया और बस। हाँ, लड़ना मुश्किल होता है, वह भी जब अगला आदमी मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाए, पर छुरा घोंप कर मार डालना आसान काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। घर की ड्योढ़ी में पहुंचकर धर्मदेव रुक गया। तुमने उसे मारा क्यों? रणवीर के पहुंचने पर धर्मदेव ने पूछा। उसने हुज्जतबाजी क्यों की? पर धर्मदेव का गला सूख रहा था और जबान हकला रही थी। अगर किसी ने देख लिया होता तो, अगर हलवाई चिल्लाना शुरू कर देता तो। धर्मदेव ने थूक निगल पाने की व्यर्थ चेष्टा करते हुए कहा, हम किसी से डरते नहीं हैं, कर ले जो करना चाहता है, तुम भी कर लो जो करना चाहते हो, रणवीर ने दबंग आवाज में कहा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। अध्याय 7। दफ्तर में मिलने की बजाय आप लोग घर पर मिलने आए, जरूर कोई बहुत ही जरूरी काम होगा, रिचर्ड ने मुस्कुरा कर कहा। चपरासी ने चीख उठा दी। नागरिकों के शिष्टमंडल के सदस्य एक एक करके कमरे के अंदर दाखिल हुए। रिचर्ड दरवाजे के पास ही खड़ा रहा और कमरे में रखी कुर्सियों की ओर इशारा करता रहा और तैरती नजर से शिष्टमंडल के सदस्य की ओर देखता रहा। फिर मेज के पीछे कुर्सी पर जा बैठा और बैठते ही पेंसिल हाथ में ले ली। चार आदमी पगड़ियों वाले थे, एक सूमी टोपी वाला था, दो गांधी टोपी पहने थे। रिचर्ड ने शिष्टमंडल की बनावट से ही समझ लिया कि इनसे निबटना कठिन नहीं होगा। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सदस्यों को डिप्टी कमिश्नर की शिष्टता बहुत फली लगी। इससे पहले कमिश्नर तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, उससे मिलना तक मुश्किल हुआ करता था। अब तक रिचर्ड ने लगभग सभी सदस्यों का जायजा ले लिया था। पुलिस की रिपोर्टों से वह सियासी आदमियों के बारे में समझ गया था कि कौन कौन होंगे। गांधी टोपी वाला वही ढीला ढाला आदमी बख्शी होगा जो 16 साल तक जेल काट चुका है। और वह नुक्कड़ में बैठा रूमी टोपी वाला हयात बख्श है, मुस्लिम लीग का कारकुन। साथ में मिशन कॉलेज का अमरीकी प्रिंसिपल हार्वर्ड भी आया था, और ये लोग साथ में प्रोफेसर रघुनाथ को भी पकड़ लाए हैं, क्योंकि यह मेरा परिचित है। बाकी लोग विभिन्न संस्थाओं से आए होंगे। रिचर्ड बख्शी जी को मुखातिब होकर बोला, मुझे खबर मिली है कि शहर के अंदर तनाव पाया जाता है। हम इसी सिलसिले में आपसे मिलने आए हैं, बख्शी जी बोले। बख्शी जी उत्तेजित थे। सुबह के सारे कार्यकलाप से वह खींचे हुए थे। अपनी पहलकदमी पर पहले लीग के प्रधान के घर गए थे, फिर वहाँ बेरुखी देखकर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के पास ही शिष्टमंडल ले जाने का निश्चय किया था, और एक एक सदस्य को घर से पकड़ पकड़ कर इकट्ठा किया था और अपने साथ लाए थे। डिप्टी कमिश्नर के पास आने में किसी को ऐतराज नहीं था। सरकार की तरफ से फौरन ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे स्थिति काबू में आ जाए, वरना इस शहर पर चीले मंडराएंगे। उन्होंने वही वाक्य दोहरा दिया जो बार बार उनके जहन में घूम रहा था। अन्य सदस्य चिंतित थे, पर बख्शी जी की तरह उत्तेजित नहीं थे। तभी प्रोफेसर और रिचर्ड की नज़रें मिली। प्रोफेसर ही एक ऐसा हिंदुस्तानी था जिसके साथ रिचर्ड का थोड़ा बहुत उठना बैठना था। दोनों को अंग्रेजी साहित्य और भारतीय इतिहास में रुचि थी, और रिचर्ड को वह सदा ही एक सुशिक्षित व्यक्ति लगा करता था। आंखों आंखों में ही दोनों मुस्कुरा दिए, मानो एक दूसरे से कह रहे हों, ये लोग दुनियावी कामों में भी हमें घसीट लाए हैं, वरना हमारी दुनिया तो दूसरी है। रिचर्ड ने सिर हिलाया और पेंसिल से मेज को ठकोरा। सरकार तो बदनाम है, मैं अंग्रेज अफसर हूँ, ब्रिटिश सरकार पर आपको विश्वास नहीं है, उसकी बात को तो आप कहाँ सुनेंगे, रिचर्ड ने व्यंग से कहा और पेंसिल ठकोरता रहा। मगर ताकत तो ब्रिटिश सरकार के हाथों में है, और आप ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदा हैं, शहर की रक्षा तो आप ही की जिम्मेदारी है, बख्शी जी बोले, और बोलते हुए उनकी ठुड्डी कांप गई और उत्तेजनावश चेहरा पीला पड़ गया। ताकत तो इस वक्त पंडित नेहरू के हाथ में है, रिचर्ड ने फिर मुस्कुराकर धीमे से कहा। फिर बख्शी जी की ओर देखकर बोले, आप लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो भी दोष ब्रिटिश सरकार का, और जो आपस में लड़ें तो भी दोष ब्रिटिश सरकार का। उसके होठों पर मुस्कान बराबर बनी रही। वह फिर जैसे संभल गया और बोला, लेकिन कहिए, हमें इस मसले को मिलजुल कर सुलझाना चाहिए। और उसने हयात बख्श की ओर देखा। अगर पुलिस मोहतात रहे तो कुछ नहीं होगा, हयात पक्ष बोला। यूँ मस्जिद के सामने जो कुछ पाया गया है उसके पीछे हिंदुओं की बहुत बड़ी शरारत है। आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें हिंदुओं की शरारत है, दानवीर लक्ष्मी नारायण ने उछल कर कहा, और बोलते बोलते उनकी आवाज ऊंची होती गई। रिचर्ड के लिए मामला अपने आप सुलझता जा रहा था। एक दूसरे को दोष देने से कोई लाभ न होगा, रिचर्ड ने आश्वस्त भाव से कहा। आप लोग जाहिर हैं मामले को सुलझाने के लिए मेरे पास आए हैं। बेशक, हयात पक्ष बोला, हम भी नहीं चाहते कि शहर में फसाद हो, मारकाट हो। लक्ष्मी नारायण को बड़ा अकेलापन महसूस हुआ, उन्हें अपने धर्म बंधुओं पर गुस्सा आया। वे भी साथ में होते तो इस वक्त उन्हें अकेले तो मुसलमानों के खिलाफ न बोलना पड़ता। डिप्टी कमिश्नर को 10 बातें बताते कि कैसे जामा मस्जिद में असला इकट्ठा किया जा रहा है, कैसे एक गाय को काट डाला गया है। यहाँ बोलना तो नक्कू बनने वाली बात थी। शायद यही बेहतर था कि हिंदू सिखों का वफद अलग से डिप्टी कमिश्नर से मिलता, उनके सामने स्याह और सफ़ेद खोलकर रखता। बख्शी जी ने रिचर्ड को संबोधन करते हुए कहा, अगर इस शहर में पुलिस गश्त करने लगे, जगह जगह फौज की चौकियां बिठा दी जाएं, तो दंगा फसाद नहीं होगा, स्थिति काबू में आ जाएगी। रिचर्ड ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, फौज का इंतजाम तो मेरे हाथ में नहीं है, यहाँ पर छावनी तो है, पर इसका यह मतलब नहीं कि फौज मेरे हुक्म से काम करती है। छावनी भी ब्रिटिश सरकार की है और हुकूमत भी ब्रिटिश सरकार की है, बख्शी जी ने कहा। अगर आप फौज बिठा देंगे तो मामला काबू में आ जाएगा। रिचर्ड ने सिर हिला दिया। फौज को मैं हुक्म नहीं दे सकता, यह तो आप भी जानते होंगे। डिप्टी कमिश्नर को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। आप फौज नहीं बैठा सकते तो शहर में कर्फ्यू लगा दें, इसी से स्थिति संभल जाएगी, पुलिस की ही चौकियां बैठा दें। इस छोटी सी बात को लेकर कर्फ्यू लगा देने से क्या शहर में घबराहट और ज्यादा नहीं फैलेगी? आप क्या सोचते हैं? रिचर्ड ने इस लहजे में ये शब्द कहे मानो उनसे मशविरा मांग रहा हो, पर साथ ही उसने रैक में से एक कागज उठाया और उस पर पेंसिल से कुछ लिख दिया और फिर घड़ी की ओर देखा। सरकार अपनी ओर से जो कार्रवाई कर सकती है जरूर करेगी, रिचर्ड ने आश्वासन के स्वर में कहा, लेकिन आप लोग शहर के नेता हैं, लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। आपको चाहिए कि आप मिलकर लोगों से अपील करें कि अमन कायम रखें। दो तीन सिर फौरन हिलने लगे। साहब ठीक कहते हैं, रिचर्ड कहे जा रहा था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के लीडर यहाँ मौजूद हैं। आप सरदारी को साथ ले लीजिए और सब मिलकर अमल कमेटी बनाइए और काम शुरू कर दीजिए। सरकार आपकी हर तरह से मदद करेगी। वह तो हम करेंगे ही, बख्शी जी फिर उत्तेजित स्वर में बोले, मगर इस वक्त हालत नाजुक है। अगर मारकाट शुरू हो गई तो उसे संभालना कठिन होगा। अगर एक हवाई जहाज ही शहर के ऊपर उड़ जाए तो लोगों को कान हो जाएंगे कि सरकार बाखबर है। फसाद को रोकने के लिए इतना भी काफी होगा। रिचर्ड ने फिर से सिर हिलाया, मुस्कुराया और कागज पर पेंसिल से कुछ लिख लिया। हवाई जहाजों का महकमा भी मेरे अधीन नहीं है, रिचर्ड ने मुस्कुरा कर कहा, आपके अधीन सब कुछ है साहब, अगर आप कुछ करना चाहें तो। इतना चुप भी रहना ठीक नहीं है, रिचर्ड ने सोचा, यह आदमी बढ़ता ही जा रहा है। वास्तव में आपका मेरे पास शिकायत लेकर आना ही गलत था। आपको तो पंडित नेहरू या डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह के पास आना चाहिए था। सरकार की बागडोर तो उनके हाथ में है, कहते ही रिचर्ड हंस दिया। डिप्टी कमिश्नर का रुख देखकर बाकी लोग चुप हो गए, पर बख्शी जी फिर उत्तेजित होकर बोले, हमें खबर मिली है कि अभी घंटा भर पहले आपके अंग्रेज पुलिस अफसर रॉबर्ट साहिब ने जबरदस्ती एक मुसलमान परिवार को घर में से निकाला है। इससे उस सारे इलाके में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि वह मुसलमान एक हिंदू मालिक मकान का किराएदार था। मैं सोचता हूँ शहर की हालत को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई को स्थगित किया जा सकता था। रिचर्ड को इस घटना के बारे में मालूम था, बल्कि पुलिस अफसर ने कार्रवाई करने से पहले रिचर्ड से मशविरा भी किया था और रिचर्ड ने यह कह दिया था कि कोर्ट के फैसले पर अमल करना रोजमर्रा की सामान्य कार्रवाई है, उसे स्थगित करने में कोई तुक नहीं। लेकिन उसने शिष्टमंडल के सदस्यों पर जाहिर नहीं होने दिया कि वह इस घटना के बारे में कुछ भी जानता है। पेंसिल से कागज पर कुछ लिखते रहने के बाद उसने कहा, मैं दरियाफ्त करूंगा, और फिर घड़ी की ओर देखा। इस पर हार्बर्ट, जो बड़ी उम्र का अमरीकी पादरी और स्थानीय मिशन कॉलेज का प्रिंसिपल था, धीमी आवाज में बोला, शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है, यह राजनीतिक पार्टियों के ऊपर सवाल है। शहर के सभी लोगों का, नागरिकों का सवाल है। इसमें अपनी अपनी पार्टियों को भूल जाना होगा। सरकार का भी रोल इसमें बहुत बड़ा है। हम सबको मिलकर शहर की स्थिति को संभाल लेना चाहिए। हमें इसी वक्त शहर का दौरा करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, उनसे अपील करनी चाहिए कि वे आपस में नहीं लड़ें। रिचर्ड ने फौरन इस सुझाव का समर्थन करते हुए इसे और भी ज्यादा ठोस शक्ल में पेश किया, मेरा सुझाव है कि एक बस ले ली जाए और उस पर लाउड स्पीकर लगा दिया जाए। आप लोग उसमें बैठ जाएं और शहर भर में घूमकर लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं। रिचर्ड के मुंह से ये शब्द निकलने की देर थी कि बाहर बागीचे की ओर से तरह तरह की घबराहट भरी आवाजें सुनाई देने लगीं। पुल के पार एक हिंदू को कत्ल कर दिया गया है, बाहर बैठे चपरासी से कोई आदमी कह रहा था, सभी बाजार बंद हो गए हैं। शिष्टमंडल के सदस्यों के कान खड़े हो गए। डिप्टी कमिश्नर का बंगला शहर से बहुत दूर था। अगर सचमुच फसाद छिड़ गया है तो उनके लिए अपने अपने घर तक पहुंच पाना असंभव हो जाएगा। तभी दूर बंगले के पास किसी तांगे के सर पर दौड़ने की आवाज़ आई। सड़क पर किसी के भागते कदमों की भी आवाज़ आई। लगता है शहर में गड़बड़ शुरू हो गई है, लक्ष्मी नारायण ने घबरा कर कहा और उठ खड़ा हुआ। जो भी मुमकिन हुआ किया जाएगा, रिचर्ड ने कहा। गड़बड़ शुरू हो गई है तो बुरी बात है। एक एक करके सभी सदस्य उठ खड़े हुए और चीख उठाकर बाहर आने लगे। डिप्टी कमिश्नर भी दरवाजे तक उनके साथ आया। आपको भेजने का इंतजाम हम करेंगे, पुलिस के कुछ सिपाही आपके साथ जाएंगे, रिचर्ड ने कहा और मेज पर रखे टेलीफोन की ओर मुड़ा। आप हमारी चिंता न करें, जरूरी यह है कि शहर में गड़बड़ न हो, बख्शी जी ने बाहर आते हुए कहा। अभी भी वक्त है, आप कर्फ्यू लगा दें। साहब ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। बंगले में से निकलते ही शिष्टमंडल के सदस्यों के दिमाग में जैसे धूल उड़ने लगी। फाटक पार करते ही उन्होंने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया था। कुछ दूरी तक वे एक साथ चलते गए, फिर सहसा लक्ष्मी नारायण और सरदार जी सड़क पार करने लगे। लक्ष्मी नारायण ने सिर पर से पगड़ी उतार कर बगल में दबा ली और भागता हुआ सा सड़क पार करने लगे। बंगले के बाहर सड़क पर पहुंचने पर दाएं हाथ ढलान पड़ती थी जो सीधी उस पुल तक चली गई थी जो शहर को छावनी से अलग करता था। हार्वर्ड अपनी साइकिल पर आया था। वयोवृद्ध आदमी अभी भी साइकिल चलाता था। वह धीरे धीरे साइकिल चलाता हुआ ढलान उतर गया। एक बार उसके मन में आया कि पूछे कि अमन कमेटी की मीटिंग कब और कहाँ होगी, पर इन लोगों को घबराया देखकर चुप हो गया। अगर फसाद फूट पड़ा है तो मीटिंग अब क्या होगी। हयात बख्श भाग नहीं रहा था, केवल तेज तेज चल रहा था और बार बार पीछे की ओर घूम कर देख रहा था। पीछे की ओर लगभग सभी घूम घूम कर देख रहे थे। कोई बात नहीं, आराम से चलो, इलाका मुसलमानी है, हयात बख्श ने मन ही मन कहा। सड़क के पार सरदार जी कदम बढ़ाते हुए आगे निकल गए। उनके पीछे लगभग 10 गज की दूरी पर लक्ष्मी नारायण चला आ रहा था। देह भारी होने के कारण उसके लिए तेज चलना कठिन हो रहा था और वह बार बार रुमाल से अपनी गर्दन पोंछ रहा था। बख्शी और मेहता कुछ देर तक गेट के पास ठिठके खड़े रहे, फिर वे भी ढलान उतरने लगे। बिजली दफ्तर के सामने हयात बख्श को मौलादाद सड़क के किनारे खड़ा मिल गया। दाढ़ी वाला मौलादाद जो बिजली कंपनी में क्लर्क था और मुस्लिम लीग का कारकुन था। क्या कर आए हो, उसने हयात बख्श से पूछा। डिप्टी कमिश्नर से मिलने गए थे ना। मिल आए हैं, वहाँ उसके पास बैठे ही थे कि बाहर शोर हुआ। सभी ने सोचा गड़बड़ हो गई और मीटिंग बर्खास्त हो गई। सभी वहाँ से निकल आए। शहर की क्या खबर है। तनाव है, तनाव बढ़ रहा है। रत्ती के पास सुनते हैं कोई गड़बड़ हुई है। इधर पीछे क्या हाल है। पीछे ठीक है। इतने में हकीम अब्दुल गनी और सरदार विशन सिंह भी पहुंच गए। कुछ फासला अलग अलग तय करने के बाद दोनों एक साथ चलने लगे थे। हकीम जी कांग्रेसी मुसलमान थे, इसलिए विशन सिंह को इनके साथ साथ चलने में संकोच नहीं हुआ। फसाद होना भी नहीं चाहिए, लक्ष्मी नारायण बोला, बहुत बुरी बात है। मौलादाद ने बड़ी तीखी नज़र से लक्ष्मी नारायण की ओर देखा। आप लोगों का बस चले तो आप तो फसाद करवा कर ही छोड़ोगे, हम ही लोग बर्दाश्त किए जा रहे हैं। फिर उसकी नज़र हकीम जी पर पड़ी और उन्हें देखते ही मौलादाद का पारा तेज हो गया। यह हिंदुओं का कुत्ता भी आपके साथ गया था, यह किसकी नुमाइंदगी करने गया था। तीनों चुप हो गए। हकीम जी सुना अनसुना करते हुए मुंह ऊंचा किए पुल की दिशा में देखने लगे, पर मौलादाद हकीम जी को देखते ही तिलमिला उठा था। मुसलमान का दुश्मन हिंदू नहीं है, मुसलमान का दुश्मन वह मुसलमान है जो दुम हिलाता हिंदुओं के पीछे पीछे जाता है, उनके टुकड़ों पर पलता है। देखिए मौलादाद साहिब, हकीम जी ने बड़े ठहराव के साथ कहा, आपका जो मन आए मुझे कहिए, पर सबसे अहम सवाल हिंदुस्तान की आज़ादी का है, अंग्रेज से ताकत छीनने का है, हिंदू मुसलमान का नहीं है। चुप रह कुत्ते, मौलादाद ने चीख कर कहा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और होठ कांप रहे थे। छोड़ो छोड़ो, जाने दो, यह वक्त झगड़ा करने का नहीं है। क्षण भर के लिए लक्ष्मी नारायण की टांगों में पानी भर गया, लेकिन हयात बख्श बुजुर्ग आदमी था, उसने स्थिति संभाल ली। जाइए जाइए हकीम जी, मगर आपके सरपरस्त तो टांगे पर बैठ कर निकल गए हैं, आपको अकेला छोड़ गए हैं। हकीम जी धीरे धीरे सरकने लगे थे। सरदार जी भी उनके साथ साथ जाने लगे। लक्ष्मी नारायण ज्यों का त्यों खड़ा रहा। घर जा रहे हो, मौलादाद ने हयात बख्श से पूछा। लीग के दफ्तर में नहीं चलोगे। मैं बाद में पहुंच जाऊंगा, तुम चलो। मौलादाद समझ गया कि हयात बख्श ने क्यों लक्ष्मी नारायण को अपने साथ ले रखा है। बड़े आदर भाव से दिल पर हाथ रखकर लक्ष्मी नारायण से बोला, खातिर जमा रखिए लाला जी, हमारे रहते आपका कोई बाल भी बाका नहीं करेगा। हयात बख्श और लक्ष्मी नारायण आगे बढ़ गए। 12 बजे के करीब लीजा टहलती हुई बरामदे में खुलने वाले दरवाजे की ओर आ गई। पर्दे को थोड़ा हटाकर लीजा ने बाहर झांक कर देखा। बरामदे के बाहर चिलचिलाती धूप सारे बाग को ढके थी। लगता था जैसे कांच चमक रहा है, लगता जैसे जमीन में से कोई चीज कांप कांप कर निकल रही है, हवा में थरथरा रही है। अभी से धूप इतनी तेज हो गई थी, उसने पर्दा गिरा दिया। वह बड़े कमरे में आ गई। जगह जगह रखी प्रतिमाओं और भूतों को देखकर उसे जड़ता का सा भास हुआ, जैसे वहां पर प्रतिमाएं नहीं मृत बुद्धों के सिर रखे हों, जिन्हें अकेले में देखकर कभी कभी उसे झुरझुरी होने लगती थी। किताबों और मूर्तियों से भरे इस घर में उसे घुटन महसूस होने लगी थी। कमरे में घूमती तो उसे लगता जैसे बुद्ध की भूत कनखियों से उसकी ओर देख रहे हैं। रिचर्ड के चले जाने पर इन सभी चीज़ों में जड़ता आ जाती थी। शायद इसका कारण यही था कि वह अकेली रह जाती थी। दिन भर उसे इन्हीं भूतों और किताबों के ढेरों के पास साथ बिताना पड़ता था। दिन भर अकेले इन्हीं को देख देख कर वह एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर काटती रही थी। वह बुद्ध की प्रतिमा के सामने जा खड़ी हुई। मन बहलाव के लिए उसने बिजली का बटन दबाया। सचमुच बुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल उठी थी। उसने बिजली बुझा दी, मुस्कान ओझल हो गई। उसने फिर से बटन दबाया, मुस्कान फिर से लौट आई, पर उसे लगा जैसे भूत कनखियों से उसकी ओर घूरे जा रहा है। उसने झट से बिजली बुझा दी। तभी खटाक का शब्द हुआ। लीजा ने घूमकर बाईं ओर देखा। उसे पहले तो कुछ नजर नहीं आया, फिर उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर गई। एक छिपकली वहां औंधी पड़ी थी और जोर जोर से हिल रही थी, जैसे तड़प रही हो। लीजा सिर से पांव तक सिहर उठी। छिपकली दीवार पर से बिजली की बत्ती के पास से गिरी थी। शीघ्र ही छिपकली ने हिलना डुलना छोड़ दिया। लीजा समझ गई कि वह मर गई है। गर्मी बढ़ रही थी और आए दिन छिपकलियां मर रही थीं। अनगिनत कमरों के बावजूद बंगला पुराना था। अंग्रेजों की अमलदारी ने पंजाब में जब अपने पैर जमाए थे तभी का था। लीजा ने दरवाजे के पास कॉलबेल का बटन दबाया और स्वयं कमरे से निकलकर बाहर आ गई। जब लीजा भारत आई थी तो बहुत सी योजनाएं बनाकर कि वह भारत की दस्तकारी के नमूने इकट्ठी करेगी, खूब घूमेगी, तस्वीरें उतारेगी, शेर की पीठ पर बैठकर तस्वीर खिंचवाएगी, साड़ी पहनकर घुमा करेगी और जाने क्या क्या। यहाँ उसे मिली थी चिलचिलाती धूप, बड़े बंगले का कारावास, कभी न खत्म होने वाला दिन और गौतम बुद्ध के भूत और छिपकलियाँ और सांप। बंगले के बाहर के जीवन में भी वैसी ही एक रास्ता थी। क्लब, अंग्रेज अफसरों की पत्नियां, कमिश्नर की पत्नी। कमिश्नर स्वयं इतनी अधिक कमिश्नरी नहीं करता था जितनी उसकी पत्नी करती थी। ब्रिगेडियर की पत्नी का सभी स्त्रियों के साथ छोटाई और बड़ाई के आधार पर मेल मिलाप, और बड़े अफसरों की पत्नियां अधिक थीं क्योंकि तब रिचर्ड छोटा अफसर था। शनिचर की रात क्लब में डांस होता, आए दिन पार्टियां होती, पर लंबे दिन फिर भी काटे नहीं करते थे। और तभी उसे बियर पीने की लत पड़ गई थी। कमरों में आती जाती वह ऊब उठती और बियर का गिलास भर लेती। ऊब से बचने का और कोई उपाय नहीं था। अब की बार वह अधिक स्वस्थ होकर आई थी। उसने सोचा था कि अब की बार वह न केवल रिचर्ड की दिलचस्पियों में शामिल होगी बल्कि उसके प्रशासन के काम में भी रुचि लेगी और सार्वजनिक कामों में भी भाग लेगी। जानवरों की रक्षा के लिए बनाई जाने वाली संस्था क्या काम करेगी, उसने मन ही मन सोचा। मुझे उसमें क्या काम करना होगा। लीजा के मन में जोरों की ललक उठी कि खानसामा जब आए तो उसे बियर लाने के लिए कहे। खानसामा नया था और उसकी इस कमजोरी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। क्या वह स्वयं गली गली सड़क सड़क घूमेगी, घोड़ों और आवारा कुत्तों को एक एक करके मरवाती फिरेगी, या कैसा काम होगा, या वह जिले की प्रथम महिला होने के नाते प्रधान बनी रहेगी और काम निचले लोग करेंगे। लीजा की मनस्थिति विचित्र हो रही थी। एक ओर ऊब का भय और दूसरी ओर जिले की प्रथम महिला जिलाधीश की पत्नी होने का गर्व। दर्जनों नौकर चाकर, इतना बड़ा बंगला जो एक ओर भाए भाए करता था तो दूसरी ओर उसे प्रभुता का भास देता था। मेम साहब, खानसामा सामने खड़ा था। हमारे कमरा में ड्रेसिंग टेबल पर छिपकली मरा है, उसे उठाओ चाओ, उसने दबदबे से कहा। खानसामा ने सलाम किया, हुजूर, कहाँ, और वहाँ से चला गया। लीजा चलती हुई फिर बरामदे की खिड़की के पास आ गई। पर्दा उठाने पर फिर उसे तपते कांच जैसी चौधियाती धूप से साक्षात हुआ। पर साथ ही बरामदे में एक को लगी छोटी सी मेज पर रिचर्ड के दफ्तर का बाबू बैठा नजर आया, तो चिट्ठियां छांट रहा था। काले रंग का छोटी उम्र का बाबू, जिसके सफ़ेद दांत बहुत चमकते थे और जो हर वाक के साथ रिचर्ड से यस सर दो बार जरूर कहता और दाएं बाएं सिर हिलाता था। उसे देखकर लीजा मुस्कुरा दी। बाबू अंग्रेजी जानता था और उसे अंग्रेजी में बातें करते सुनकर लीजा का बड़ा मनोरंजन हुआ था। लीजा खाने वाले कमरे के रास्ते बरामदे में आ गई। बाबू रिचर्ड की देखा देखी लीजा ने भी उसे बाबू ही कहकर पुकारा और दरवाजे के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। बाबू अपनी फाइल संभालता हुआ भागकर लीजा के सामने आ खड़ा हुआ। यस सर, यस मैडम। बाबू का चेहरा सांवला था और दांत बेहद सफ़ेद थे और बाबू के शरीर का प्रत्येक अंग जैसे उसके धड़ के साथ पेंचों से जोड़ा गया था, क्योंकि उसका कोई न कोई अंग हर वक्त झटका खाकर टेढ़ा हो जाता था। कभी दाया कंधा झुक जाता, कभी बायां घुटना झुक जाता, पर मुंह हर वक्त खुला रहता और सफ़ेद दांत सारा वक्त झिलमिलाते रहते। यू हिंदू बाबू? यस मैडम, बाबू ने तनिक झेप कर कहा। लीजा अपनी सूझ पर खिल उठी। आई गेस्ट राइट, यस मैडम। लीजा उसकी ओर देखती रही। देखते ही देखते वह दुविधा में पड़ गई। उसने किस आधार पर कहा था कि वह हिंदू है? पोशाक में उसने पतलून कोट टाई पहन रखे थे। वह सोच में पड़ गई, कौन से चिन्ह होते हैं जिनसे एक हिंदू को पहचाना जाता है। फिर वह उठ खड़ी हुई और अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर के बालों में कुछ ढूंढती रही। बाबू झेप गया। 31 साल का बाबू पिछले 10 साल से दफ्तर में स्टेनो का काम कर रहा था। लीजा ही पहली डिप्टी कमिश्नर की पत्नी थी जो बेतकल्लुफी से उसके साथ बातें करने लगी थी। अन्य डिप्टी कमिश्नरों की पत्नियां बड़ी रुखाई और उपेक्षा से उससे पेश आया करती थीं। बरामदे के सिरे पर किचन की ओर जाने वाले छोटे से आंगन में खानसामा, बाग का माली और किचन का रसोईया खड़े थे और उन्हीं की ओर देखे जा रहे थे। नो इट इजंट देयर, लीजा बोली। बाबू को सिर से पैर तक झुरझुरी हुई। जेब में उसके मुस्कुराते होठ कांप रहे थे। यू आर नो हिंदू, यू टोल्ड ए लाई। नो मैडम, आई एम ए हिंदू, एक ब्राह्मण हिंदू। ओ नो, देन वेयर इज योर टफ्ट? बाबू डर रहा था। शहर में दंगे की आशंका थी और वह कठिनाई से बचता हुआ दफ्तर पहुंचा था, पर लीजा की बात सुनकर वह आश्वस्त था महसूस करने लगा। काले चेहरे में उसके सफेद दांतों की लड़ी चमक उठी। आई हैव नो टफ्ट मैडम, देन यू आर नो हिंदू, लीजा ने अपनी तर्जनी उसकी ओर हिलाते हुए हंसकर कहा। यू टोल्ड ए लाई। नो मैडम, आई एम ए हिंदू, टेक ऑफ योर कोट बाबू, लीजा ने कहा। ओ मैडम, बाबू फिर छेप गया। टेक ऑफ हर्री, बाबू ने मुस्कुराते हुए कोट उतार दिया। वेरी गुड, नाउ अनबटन योर शर्ट। व्हाट मैडम? डोंट से व्हाट मैडम, से आई बेग योर पार्डन मैडम। ऑल राइट, अनबटन योर शर्ट। बाबू निसहाय सा लीजा के सामने खड़ा रहा, फिर नेकटाई के नीचे हाथ डालकर एक एक करके तीन बटन खोल दिए। शो मी योर थ्रेड। व्हाट मैडम? योर थ्रेड। व्हाट मैडम? शो मी योर हिंदू थ्रेड। बाबू समझ गया, मेम साहिब यज्ञोपवीत के बारे में पूछ रही थी। बाबू के यज्ञोपवीत नहीं था। 10वीं जमात पास करके कॉलेज में आने पर उसने चुटियां कटवा ली थी और 12वीं जमात में प्रवेश करने पर उसने यज्ञोपवीत उतार कर फेंक दिया था। आई हैव नो थ्रेड मैडम, उसने खिसियाई सी मुस्कान के साथ कहा। नो थ्रेड, देन यू आर नो हिंदू। आई एम ए हिंदू मैडम, आई स्वेयर बाई गॉड, आई एम ए हिंदू। वह फिर से डरने लगा था। नो, यू आर नो हिंदू, यू टोल्ड ए लाई, आई शैल टेल योर बॉस अबाउट इट। बाबू का चेहरा पीला पड़ गया। कमीज के बटन बंद कर कोट पहनते हुए उसने घबरा कर कहा, आई टेल यू सिंसियरली मैडम, आई एम ए हिंदू, माई नेम इज रोशन लाल, रोशन लाल, बट द कुक्स नेम इज रोशन डीन एंड ही इज ए मुसलमान। यस मैडम, बाबू बोला। उसके लिए समझाना कठिन हो गया। ही इज रोशन दीन मैडम, आई एम रोशन लाल, आई एम ए हिंदू, ही इज मुस्लिम। नो, रिचर्ड टोल्ड मी यू पीपुल हैव डिफरेंट नेम्स। फिर बाबू की ओर तर्जनी उठाकर झूठे आक्रोश के स्वर में बोली, नो बाबू, यू टोल्ड ए लाई, आई शैल टेल योर बॉस। बाबू का गला सूख रहा था और दिल धड़कने लगा। शहर में गड़बड़ के कारण ही तो यह पूछताछ नहीं हो रही है, बेम साहिब चाहती क्या हैं? सहसा लीजा अब उठी, गो बाबू, आई शैल टेल एवरीथिंग टू योर बॉस। बाबू ने बरामदे के फर्श पर से अपनी फाइल उठाई और पीछे को मुड़ गया। अभी वह बरामदा लाँग कर जा ही रहा था जब लीजा ने फिर से आवाज़ लगाई, बाबू। बाबू मुड़ा, कम ईयर। नज़दीक आने पर लीजा ने गंभीर मुद्रा बनाकर कहा, वेयर इज योर बॉस? इन द ऑफिस मैडम, ही इज़ वेरी बिजी मैडम। ऑल राइट, गो, यू एंड योर बॉस गो, गेट आउट ऑफ हियर, उसने चिल्ला कर कहा। यस मैडम, और बाबू फिर कांपता हुआ मुड़ गया। बाबू के चले जाने के बाद लीजा को जैसे मथली आने लगी। उसका हांसोड़ मुंह फिर व्यक्ति और वितृषा में बदलने लगा। बाबू को कंधे झुकाए हुए जाता देखकर उसे लगने लगा जैसे कोई लसलसा सा जीव जा रहा है। न जाने रिचर्ड कैसे इन लोगों के साथ दिन भर काम कर सकता है। एक गहरी हूक सी उसके मन में उठी और वह उन्हीं कदमों बंगले के अंदर जाने के लिए मुड़ गई। अध्याय 8। शहर में सब काम जैसे बटे हुए थे। कपड़े की ज़्यादातर दुकानें हिंदुओं की थीं, जूतों की मुसलमानों की, मोटरों लारियों का सब काम मुसलमानों के हाथों में था, अनाज का काम हिंदुओं के हाथ में। छोटे छोटे काम हिंदू भी करते थे और मुसलमान भी। शिवालय का बाजार किसी दुल्हन के चेहरे की तरह खिला हुआ था। वहाँ रोज जैसी ही रौनक थी, कोई नहीं कह सकता था कि कहीं कोई तनाव पाया जाता है। सुनारों की दुकानों पर अनेक बुरके वाले गांवों की औरतें चांदी के जेवर खरीदने बनवाने के लिए जगह जगह बैठी थीं। हकीम लाभ राम की दुकान के सामने दवाइयां कूटने वाले दो कश्मीरी मुसलमान नाक मुंह लपेटे दौरी में दवाइयां कूट रहे थे। कुबड़े हलवाई की दुकान पर लगभग रोज जैसी ही भीड़ थी। खोमचे वाला संतराम आज भी ठीक 1 बजे अपनी हथगाड़ी धीरे धीरे चलाता हुआ सराफों का बाजार लाँघ कर शिवालय के बाजार में आ गया था और रोज के ही मुताबिक दर्जी खुदाबख्श और उसके दो भाइयों के लिए आधी आधी छनाक हलवे के 3 पत्ते बनाकर भेज रहा था। वातावरण में स्थिरता थी। सुबह की घटना से पैदा होने वाला तनाव कुछ दब गया था, कुछ बिखर गया था। सड़कों पर चहल पहल थी। खुदा बख्श की दुकान के सामने गली के सिरे पर कमेटी का कारिंदा सीढ़ी लगाकर दीवार में लगे लैंप की चिमनी साफ कर रहा था और लैंप में तेल डाल रहा था। नगर का कार्य कलाप फिर से जैसे किसी संगीत की लय पर चलने लगा हो। दर्जी खुदा बख्श की दुकान पर सरदार हाकिम सिंह की पत्नी उलाना दे रही थी। बे बख्शिया, तू कपड़े की देसे भर से या हेरे की पमादा रह से, कभी हमारे कपड़े भी सी कर देगा या रोज तेरी दुकान के चक्कर ही मारती रहूं? खुदा बख्श मुस्कुरा दिया। शहर की सभी हिंदवाणियां, सरदारनियां, विशेषकर खाते पीते घरों की औरतें उसे बख्शा ही कहकर पुकारती थीं। बख्शे की दुकान पर शादी के लिए सिले जाने वाले कपड़ों का ढेर लगा रहता था। जद मैं कहंदा रिहा बीबी, भेजो कपड़े भेजो कपड़े, तुसा कुछ न कीता, सारियां सरदारियां लंघा दित्तियां, हूण वकत ता लगदे 16 हत्त ता नहीं मेरे। जब मैं कहता था बीबी लाओ कपड़े, आपने कोई परवाह नहीं की, सारा जाड़ा बीत गया, अब वक्त तो लगेगा ही, मेरे 16 हाथ तो नहीं हैं। क्यों जाड़ा कैसे बीत गया? क्यों भला, शिवराम के बेटे के ब्याह के 15 दिन बाद आपने बेटी की सगाई की थी या नहीं? तब कौन सा महीना चल रहा था? हाकिम सिंह की पत्नी हंसने लगी। हाँ भाई, तू सब जानता है, अब बोल बेटी का सूट कब देगा, कारज कब है। वाह जी, बेटी की सगाई का दिन इसे याद है, ब्याह का दिन नहीं जानता। 25 को है ना, आज कौन सी तारीख है, 5 तारीख, दे दूंगा। दे दूंगा नहीं, बता कब देगा। ब्याह कारज वाले दिन तू चक्कर लगवाएगा, मैं तुझे जानती नहीं हूं। जैसे विद्या के ब्याह पर भी तूने ऐसे ही किया था। उधर बारात आने वाली थी, इधर जर्री के सूट के लिए मैं बार बार आदमी भेज रही थी। ठीक ठीक बता कब देगा। वह अभी बात कर ही रही थी जब उसके पीछे से किसी ने बख्शे की झोली में कपड़े का एक पुलिंदा फेंका। हरे रंग का रेशमी कपड़ा, साथ में तिल्ले का बॉर्डर। बख्शा, कपड़े को माप लेना और जरूरत हो तो बुद्ध सिंह की दुकान पर से मेरा नाम लेकर ले लेना। एक महिला थी। बख्शे ने कपड़े के एक कोने पर लब लगाकर उसे भिगो लिया, फिर कान के पीछे खोसी पेंसिल निकालकर कपड़े को आंक लिया और बगल वाली अलमारी में डाल दिया। अलमारी ब्याह शादी के लिए सिलने वाले कपड़ों से भरी थी। दे दूंगा दे दूंगा, मैं खुद घर पर पहुंचा आऊंगा। तू बातें बहुत करता है, अब की वक्त पर कपड़े नहीं दिए तो मैं तेरी दुकान पर कभी पैर नहीं रखूंगी। और हाकिम सिंह की पत्नी दुकान पर से चली गई। औरत चली गई तो खुदावश की नज़र शिवालय की दीवार पर पड़ी। कोई आदमी उस पर चढ़ा हुआ था। खुदावश ने ध्यान से देखा, गोरखा चौकीदार था, पर यह वहां क्या कर रहा है। दीवार के पीछे शहर का पुराना मंदिर था, जिसका कलश दूर दूर से चमकता नजर आता था। उसी मंदिर की दीवार के ऊपर एक घड़ियाल लगा था। गोरखा चौकीदार उसी घड़ियाल को साफ कर रहा था। देखो तो वह क्या है, खुदाबख्श ने अपने एक कारिंदे से कहा, जो उसके पास ही बैठा मशीन पर कपड़ा सी रहा था। घड़ियाल दुरुस्त किया जा रहा है, कारिंदे ने कहा। या अल्लाह, खुदाबख्श ने मुंह से निकाला, शहर में फसाद का डर है। फिर दोनों चुप हो गए। घड़ियाल की हल्की हल्की सी टुन टुन सुनाई दी। खुदाबख्श की नज़र फिर दीवार पर गई। गोरखा घड़ियाल के साथ नई रस्सी बांध रहा था। घड़ियाल इसी कारण हिल गया था और टुन टुन की आवाज़ आई थी। गोरखे ने गरारियों में तेल लगा दिया था और घड़ियाल चमचमा रहा था। इस घड़ियाल की आवाज़ सुनकर रूह कांप जाती है, खुदाबख्श ने कहा। पहले फसाद में जब बजा था तो मंडी में आग लगी थी और शोले आधे आसमान को ढके हुए थे। दीवार पर गोरखा अभी भी घड़ियाल साफ किए जा रहा था, मानो कोई त्योहार या पर्व आने वाला हो। और घड़ियाल इस तरह चमकने लगा था जैसे पीतल का माजा हुआ बर्तन चमकता है। साथ में नई मोटी रस्सी झूलने लगी थी। खुदाबख्श की नज़र घड़ियाल पर से हटकर साथ वाली सुरार की दुकान पर गई, जहां अधेड़ उम्र का एक आदमी और उसकी पत्नी, जो किसी गांव से आए जान पड़ते थे, अपनी बेटी से कांटों की जोड़ी लेने का आग्रह कर रहे थे। तुझे पसंद है तो ले, क्यों नहीं लेती, जल्दी कर, हमें और भी बहुत सा सामान खरीदना है, गांव भी लौटना है। बेटी की आंखें चमक रही थीं। वह बार बार कांटों को कान के पास ले जाती और शर्मा कर अपनी माँ को दिखाने लगती। कैसे लगती है माँ, लजाती सकुचाती युवती निश्चय नहीं कर पा रही थी कि कांटों की जोड़ी उसे फबती है या नहीं, वह उन्हें खरीदे या नहीं खरीदे। खुदावश की नज़र फिर एक बार मंदिर की दीवार की ओर उठी तो बूढ़ा चौकीदार दीवार पर से उतर रहा था और चमचमाते घड़ियाल से लगी रस्सी दीवार के ऊपर झूल रही थी। खुदावश के मुंह से फिर एक बार या अल्लाह निकला और उसने मुंह फेर लिया। उधर फजलदीन नानवाई की दुकान पर मजलिस जमी थी। ढलती दोपहर के वक्त काम मंदा पड़ जाने पर आसपास के यार दोस्त बतियाते आ जाते और हुक्के के दौर में दीन दुनिया की बातें चलती। बातों का सिलसिला शुरू तो उसी घटना से हुआ जो आज शहर में चर्चा का विषय बनी हुई थी, मगर बातों में से बात निकलती गई और उस नुक्ते पर जा पहुंची जहां बूढ़ा करीम खान कहने लगा कि हाकिमों के मन की थाह पाना आम आदमी के बस का नहीं होता। हाकिम दूर की सोचता है, उसके हर फेल के पीछे दूर अंदेशी पाई जाती है। जो कुछ वह देखता है उसे आम इंसान नहीं देख पाता। अंग्रेज हाकिम की आंख चारों तरफ देखती है, वरना क्या मुमकिन है कि मुट्ठी भर फिरंगी सात समंदर पार से आकर इतने बड़े मुल्क पर हुकूमत करें। अंग्रेज बहुत दानिशमंद हैं, दूर अंदेश हैं। बेशक बेशक, आसपास बैठे लोगों ने सिर हिलाए। इसी दुकान में एक और नत्थी भी बैठा था, कहवे की प्याली सामने रखे, हाथ में लंबा सा रस का टुकड़ा उठाए वह डुबो डुबो कर खा रहा था और ध्यान से करीम खान की बातें सुन रहा था। जब से उस सुअर के दड़बे में से निकला था, वह कभी शहर के एक हिस्से में तो कभी दूसरे हिस्से में चक्कर काट रहा था। जहाँ बैठता लोग सुअर की चर्चा करते सुनाई देते, राह जाते लोगों की बातें सुनते हुए उसके कान खड़े हो जाते। किसी किसी वक्त उसे लगता जैसे लोग किसी दूसरे ही सुअर की बात कर रहे हैं। वह उस सुअर की बात नहीं कर रहे जिसे उसने जिबह किया था, पर फिर किसी किसी वक्त लोगों की बातें सुनते हुए उसका दिल बैठ जाता। यहाँ इस नानबाई की दुकान पर भी बात अगर झगड़ा फसाद नहीं हो तो यह बड़ी मामूली सी घटना बनकर रह जाएगी। सरकार की आँख सब कुछ देखती है तो कोई अनहोनी बात नहीं होगी। नथु ने फिर एक बार अपनी जेब छू कर देखी, नोट चरमराया, उसे तसल्ली हुई। भला हो मुराद अली का जो पहले ही सारी की सारी रकम दे गया, वरना अगर अठन्नी हाथ पर रखकर बाकी रकम बाद में देने को कह जाता तो नथु चमार उसका कर ही क्या सकता था। मुराद अली जवान का पक्का निकला तो नथु को भी अपनी जवान का पक्का होना चाहिए था, पर वह उस दड़बे में से भाग आया था जबकि उसने मुराद अली से कसम खाकर कहा था कि वह वहाँ पर उसका इंतज़ार करेगा। उस कोठरी में उसका दम घुटने लगा था, पर शहर में पहुँचने की देर थी कि उसका खून ठंडा पड़ गया था। जगह जगह सुअर की चर्चा हो रही थी। वह अंदर ही अंदर बड़ा परेशान था, तरह तरह के विचार उसके मन में घूम रहे थे। जितनी अधिक घबराहट बढ़ती जाती उतना ही अधिक उसके विचारों में बिखराव आता जाता। बात करे तो किससे और पूछे तो क्या, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मुराद अली ने सलोतरी का नाम लेकर सुअर मरवा लिया था और मस्जिद के सामने फिकवा दिया था, पर क्या मालूम या कोई दूसरा सुअर रहा हो। उसने मस्जिद वाले सुअर को देखा तो वह नहीं था। उसका मन बार बार बेचैन हो उठता, अगर यह वही सुअर है तो क्या होगा, अगर लोगों को पता चल जाए कि उसी ने सुअर मारा था तो क्या होगा। इसी बेचैनी में कभी उसका मन करता भागकर घर चला जाए और अंदर से साकल चढ़ाकर पड़ रहे, कभी उसका मन करता गलियों में घूमता भटकता रहे, कभी कुछ कभी कुछ। मैं घर नहीं जाऊंगा, रात होते ही मोतिया रंडी के पास जाऊंगा, वह एक रुपया मांगेगी तो मैं 5 रुपये दूंगा, रात भर उसके पास रहूंगा। पर सड़कों की खाक 3 बार छानते रहने के बाद उसे अपनी पत्नी की याद सताने लगी। इस वक्त अपने घर में होता तो अपने साथी चमारों के साथ बैठकर चिलम पीता, 2 बातें करता, नहीं मैं अपने डेरे पर जाऊंगा, नहाऊंगा, कुर्ता बदलूंगा, घरवाली को पास में बैठाकर उससे बातें करूंगा, जाते ही उसे बाहों में भर लूंगा। मुराद अली का नाम लेने की जरूरत नहीं, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, इस सारे घिनौने किस्से को सुनाने की जरूरत नहीं। उसकी छाती पर सिर रखूंगा तो चैन मिलेगा, मोतिया के पास जाऊंगा तो कड़वा बोलेगी, बुरा भला कहेगी, घरवाली चुप रहने वाली औरत है, ढांढस बधाने वाली, सुख पहुंचाने वाली। नत्थू ने मन ही मन कहा, 2 रुपये मोतिया को देने की बजाय घरवाली के लिए कुछ ले जाऊंगा, वह खुश हो जाएगी, कहेगी तुम क्यों लाए, मेरे पास सब कुछ है। वह कभी कुछ नहीं मांगती, उसे लगा जैसे दूर बैठे हुए भी वह उसे अपनी बाहों में लिए हुए है और उसके मन का सारा क्षोभ दूर होता जा रहा है। दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ ही मुड़ता है, औरत को बाहों में लेने पर उसके सभी क्लेश मिट जाएंगे, उसे इस बात का विश्वास बना रहता है। वह बड़े सब्र वाली औरत है, उसकी छातियों में प्यार भरा है। कहवा खाना धुएं से अटा पड़ा था, दुकान के बाहर 2 बेंच रखे थे जिन पर बोझा उठाने वाले मजदूर बैठे टीन की प्लेटों में खाना खा रहे थे। दाल की तश्तरी सामने रखे बेंच के आर पार टांगे लटकाए नान तोड़ रहे थे। सड़क पर भिश्ती फिर से छिड़काव कर रहा था। तभी देर से ढोल बजने की सी आवाज आई। बाहर बैठे मजदूरों ने पीछे मुड़कर सड़क की ओर देखा। ढोल बजने की ही आवाज थी और बराबर नजदीक आती जा रही थी। कावा खाने के अंदर लोग चुप हो गए। क्या है, किसी ने पूछा। मुनादी है, किसी ने जवाब दिया। इधर ही आ रही है। इतने में एक तांगा जिस पर कांग्रेस का झंडा लहरा रहा था और तांगे के अंदर बैठा कोई आदमी ढोल पीट रहा था, लगभग नानबाई की दुकान के सामने ही आकर रुक गया। अगली सीट पर से एक आदमी उठकर खड़ा हो गया। तभी ढोल पीटना बंद हो गया और वह आदमी उठकर मुनादी करने लगा। वतन का फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में। साहिबान, आज शाम के 6 बजे गंज मंडी में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक आम पब्लिक जलसा होगा, जिसमें हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में अंग्रेजी सरकार की फूट की नीत का पर्दाफाश किया जाएगा और सारे शहर के आवाम से अपील की जाएगी कि वे अमन का बरकरार रखें, भारी तादाद में शामिल होकर जलसे की रौनक बढ़ाएं। तांगे की पिछली सीट पर जर्नैल ढोल थामे बैठा था। मुनादी करने वाला शंकर था, जो मुनादी खत्म कर चुकने पर फिर से अपनी सीट पर बैठ गया था। ढोल फिर से बजने लगा और लहराते झंडे के साथ तांगा वहां से रवाना हो गया। तांगा जब दूर निकल गया तो एक मजदूर दूसरे से बोला, गंज मंडी तो एक बाबू नी पंड चुक्की आ रिहा, सीजे बाबू हकड़ लगा, आजादी आवड़ वाली है। मैं हंस के कहा, आवे आजादी बाबूजी सानू के, असा हुड़ की पंड चक्कड़ी है, पिछोवी पंड चक्कांगे, कहकर मजदूर ठहाका मार कर हंस पड़ा और उसके लाल लाल मसूड़े चमक उठे। असा हुड़ भी पंड चक्कड़ी थे, पिछोवी पंड चक्कड़ी, और वह फिर हंसने लगा। बाबू ने कहा, आजादी आने वाली है। मैंने कहा, आए आजादी, पर हमें क्या, हम पहले भी बोझा ढोते हैं, आजादी के बाद भी बोझा ढोएंगे। तभी कावा खाने के अंदर बैठा दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, वह आदमी पकड़ा गया है या नहीं जिसने मस्जिद की तौहीन की थी। खंजीर का बच्चा, उसके हाथ पांव में कीड़े पड़े, बहुत बुरा हुआ है, कोई बुदबुदाया। नत्थू ने सुना और सिर से पांव तक सिहर उठा। फिर कोई और आदमी बोला, सुना है कोई गाय भी मारी गई है, गंदे नाले के पास कोई मार कर फेंक गया है, यह भी बहुत बुरा हुआ है। इस पर छोटी छोटी आंखों वाला हंसमुख बुजुर्ग करीम खान फिर से बाज करने लगा। कुरान शरीफ में फरमाया है कि इंसान की खेतियां मेरे हुक्म से खड़ी हैं, इंसान के सब इरादे मेरे हुक्म पर खड़े हैं, मेरा हुक्म नहीं होगा तो लहलहाती खेतियां झुलस जाएंगी, मेरे हुक्म पर बाढ़ आएगी, शहरों के शहर तबाह हो जाएंगे। और बूढ़े ने कहा, सभी कुछ मालिक के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं, सब काम पाक परवरदिगार के हुक्म से होते हैं, उसका जो हुक्म होगा वही होगा। आसपास बैठे लोगों ने सिर हिलाए। हुक्के का दौर बराबर चलता रहा। बाहर एक मजदूर ऊंची हेक लगाकर गाने लगा, ओए उड़ी उड़ी किया तकड़े, माहड़े सुथड़े नी चूड़िया, क्यों तुम झुक झुक कर मेरी सलवार की चुनटों को घूरे जा रहे हो। यह वही मजदूर था जो कुछ देर पहले खी खी करके बाबू के साथ हुए अपने वार्तालाप को दोहराता रहा था। उसके हंसोड़ बेपरवाह स्वभाव को देखकर नत्थू को रश्क हुआ। तभी सड़क पर फिर हरकत हुई। चलते चलते लोग खड़े हो जाने लगे और सबकी नजरें दाईं ओर घूम गई, जिस ओर जामा मस्जिद थी। पीर साहिब तशरीफ लाए हैं, गोलड़ा शरीफ के पीर आए हैं। सड़कों पर खड़े किसी आदमी ने नानबाई से कहा और दिल पर हाथ रखे पीर साहिब की राह देखने लगा। नानबाई भी उठकर खड़ा हो गया। तभी कावा खाने के अंदर बैठे सभी लोग बाहर आ गए और सड़क पर जैसे पलके बिछाए पीर साहब की आमद का इंतजार करने लगे। एक कद्दावर दाढ़ी वाला व्यक्ति नमूदार हुआ, लंबा काला कुर्ता, गले में बड़े बड़े मड़कों वाले 3-4 हार, पगड़ी के पीछे गर्दन पर गिरते हुए लंबे बाल, हाथ में तस्बीह, चौड़े गोरे चेहरे से नूर बरस रहा था। दाएं बाएं और पीछे बहुत से मुरीद चले आ रहे थे। नानबाई बढ़कर आगे आ गया और सिर झुका, जानों पर हाथ रखकर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। पीर साहब ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। नानवाई ने उसे झुककर आंखों से चूमा, फिर अपना दायां हाथ दिल पर रखे, पहले की तरह आगे की ओर दोनों हाथ बांधे झुका झुका खड़ा हो गया। पीर साहिब ने हाथ तनिक ऊपर उठाया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। बारी बारी से सड़क पर खड़े लगभग सभी आदमी उनके पास गए। सभी ने अपनी आंखों से पीर साहिब के हाथ छूमे। सभी को पीर साहिब ने दुआ दी। बहुत पहुँचे हुए पीर हैं, नानबाई ने अपनी जगह पर लौटते हुए कहा। वल्लाह चेहरे पर कितना जलाल है, पेशानी से नूर बरसता है। और लोग भी लौट आए थे, कुछ लोग वहीं से अपने अपने घरों की ओर चले गए। कावा खाने में अब पीर साहिब की चर्चा चल पड़ी। बहुत पहुँचे हुए हैं, दिल की बात बूझ लेते हैं, नानबाई कहे जा रहा था। फिर वह तख्ते पर बैठा अंदर की ओर मुंह करके बोला, मैं एक बार जियारत करने गोलड़ा शरीफ गया, पीर साहिब के हुजूर में पहुंचा तो मुझे देख कर कहने लगे, कुछ दाने उठा ले। देखता क्या है, सामने गेहूं के दानों का ढेर लगा था। मैंने यूं ही झुककर मुट्ठी में कुछ दाने उठा लिए। इस पर पीर साहिब ने फरमाया, बस सिर्फ 170 दाने, ज़्यादा उठा लेता। मैं हक्का बक्का वहीं बैठकर दाने गिनने लगा, पूरे 170 दाने थे। इस पर करीम खान बोला, इनके हाथ में बड़ी शफा है, मेरा पोता है अब तो रोठा हो गया, जरा जब छोटा सा बच्चा था तो उसे कनपेड़े हो गए, दोनों गाल सूज गए। किसी ने कहा गोलड़ा शरीफ के पास ले जाओ, पीर साहिब ने इशारा किया, बच्चे को मेरे सामने लिटा दो। मैंने लिटा दिया। फिर उन्होंने पास रखा बड़ा सा छुरा उठाया और उसे एक एक बार बच्चे के दोनों गालों को छुआ, फिर हाथ के पंजे पर अपने मुंह से अपनी लब ली और बच्चे के दोनों गालों पर लगा दी। बस इतना ही, मैं पीर साहिब की कदम बोसी करके बच्चे को उठाकर घर ले आया। घर पहुंचते पहुंचते सूजन उतर चुकी थी और बुखार जा चुका था। पीरों दस्तगीरों के हाथ में शफा होती है। उधर मसियाड़ी के पास बाबा रोडा बैठता है, उसके हाथ में भी बड़ी शफा है। पीर साहिब काफिरों को हाथ नहीं लगाते, काफिरों से नफरत करते हैं। पहले पीर साहिब के पास हर कोई जा सकता था, अगर कोई काफिर इलाज के लिए आए तो छड़ी की नोक उसकी नब्ज पर रखते थे, छड़ी का दूसरा सिरा कान पर लगाते थे और नब्ज सुन लेते थे, पर अब वह किसी काफिर को नज़दीक नहीं आने देते। अक्सर गर्मी के मौसम में शहर नहीं आते, अब की बार ही आए हैं। पीरों के लिए गर्मी सर्दी क्या, मुमकिन है इन तक खबर पहुंची हो, वह जो मस्जिद को नापाक किया गया है, इन्हें हर बात की खबर रहती है, इन्हें कोई बताने थोड़े ही गया होगा, इन्हें अपने आप पता चल जाता है, अपने आप इल्म हो गया होगा और पहुंच गए होंगे। इनकी नज़र चाहिए, पी फकीर की बद्दुआ लग जाए तो शहरों के शहर तबाह हो जाते हैं। बजा है, वाज करेंगे क्या, क्या मालूम, जुम्मा तक रहे तो ज़रूर करेंगे, जो आए हैं तो जुम्मा तक तो रुकेंगे ही, बाज तो करेंगे ही, जो आए हैं तो शहर को पाक करके ही जाएंगे। नत्थू वहाँ से निकला तो दोपहर अलसा रही थी, उसका दिल फिर हल्का हल्का महसूस करने लगा। एक प्रकार की दुखदुखी जो सुबह से उसे परेशान करती रही थी, एक अज्ञात सी आशंका जो उसके दिल को कुरेदती रही थी, अब बहुत कुछ दूर हो गई थी। शहर भर में रौनक थी, चाल पहल थी, लोग सुअर फेंकने वाले की बात करते मगर उसे सिरफिरा पागल कहकर दो एक गालियां देते और फिर इस घटना को भूल भी जाते थे। फिर वह ही क्यों इतनी सी बात को अपनी छाती का बोझ बनाता फिरे। उसने यह भी देख लिया था कि उसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं हो पाई। सभी लोग इस घटना को किसी जनूनी का पागलपन या किसी करार की शरारत कह रहे थे। मुराद अली ही केवल इस बारे में जानता है तो क्या मुसलमान होकर वह किसी से कहेगा कि उसने यह बुरा काम करवाया है। नत्थू जामा मस्जिद को सामने से लांघ गया। जिस जगह जामा मस्जिद की दीवार खत्म होती थी वहाँ बगल में एक गंदा नाला बहता था। शहर भर का गंदा पानी इसी नाले में इकट्ठा होकर शहर के बाहर जाता था। नत्थू नाले के डंडारे को पकड़कर खड़ा हो गया। उसकी नज़र नीचे की ओर गई तो उसने देखा डंडारे के थोड़ा नीचे नाले के किनारे एक चबूतरा सा था और उस पर नंग धड़ंग एक आदमी लेटा हुआ था। स्याह रंग का काला आदमी, दाढ़ी और सिर पर सूखे खिचड़ी बाल, उलझे हुए गले में ताबीज, नाले की ही दीवार के साथ अपना टीन का डिब्बा एक कील के साथ लटका कर लेट रहा था। चबूतरा तंग सा था, सोए सोए करवट बदलने पर भी वह सीधा नीचे नाली में गिर सकता था। यह भी शायद कोई पहुंचा हुआ पीर फकीर होगा, नत्थू ने मन ही मन कहा और उसकी ओर देखता रहा। सहसा फकीर उठ बैठा और आंखें फाड़ फाड़ कर नत्थू की ओर देखने लगा और देखते ही देखते दाएं बाएं जोर जोर से सिर हिलाने लगा, वैसे ही जैसे जनूनी लोग सिर हिलाते हैं। नत्थू ने मुंह फेर लिया और बाजार की ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने फिर मुड़कर देखा तो उसने सिर हिलाना छोड़ दिया था और फटी फटी आंखों से नत्थू की ओर देखते हुए अपनी तर्जनी से उसे अपनी ओर बुला रहा था। नत्थू सहम सा गया, वह डर गया कि यह फकीर कहीं उस पर कोई जादू टोना न कर दे या उसे बद्दुआ न दे दे। उसने जेब में हाथ डाला और एक इकन्नी निकालकर फकीर के सामने फेंक दी और वहां से चलने को हुआ। उसके देखते ही देखते फकीर ने इकन्नी उठा ली और नाले में फेंक दी और फिर उसकी ओर घूरते हुए तर्जनी हिला हिला कर उसे अपनी ओर बुलाने लगा। नत्थू डर गया और कांप कर वहां से हट गया। बड़ा बाजार में बड़ी चहल पहल थी। नत्थू को शहर का यह इलाका सबसे ज्यादा आकर्षक लगता था। सोडा वाटर की दोनों दुकानों पर रंगारंग की असंख्य बोतलें चमक रही थीं। नीचे उजले कपड़े पहने दुकानदार पालथी मारे नींबू पानी के गिलास भर भर कर ग्राहकों को दे रहे थे। सड़क की पटरी पर फूलों के गजरे बेचने वाले अभी से आ पहुंचे थे। सोडा वाटर की दुकानों की बगल में ही सीख कबाब वाले बैठते थे और नज़दीक ही ठेका शराब वालों की दुकान थी। वहीं पर ही कसाई गली सड़क में खुलती थी जहां रंडियां बैठती थीं। नत्थू सड़क के किनारे छिटका खड़ा रहा। दुकानों के सामने सड़क पर बहुत से तांगे खड़े थे, चमचमाते साज, घोड़ों के सिर पर नाचती कलगियां, मेले का सा समा। किसी किसी वक्त कोई टांगा सड़क के ऐन बीचों बीच आकर रुक जाता। घोड़े का कसमसाता शरीर सांस उड़ाने के लिए जैसे अंगड़ाइयां ले रहा होता और टांगे में कोई तुर्रे वाला रईस अपने दो एक साथियों के साथ बैठा होता। नत्थू चमार आश्वस्त होकर इधर उधर घूमने लगा। उसे लगा जैसे सभी लोग मस्त हैं और अपने लिए खुशियां बटोर रहे हैं। नत्थू चमार देर तक वहां टहलता रहा। फिर जब शाम हो गई और बाजार में रौनक और भी ज्यादा बढ़ गई तो वह लपक कर सीख कबाब वाले की दुकान पर जा पहुंचा। वहां से उसने अठन्नी के कबाब लिए और सीधा देशी शराब के ठेके पर जाकर बेंच पर बैठ गया और खुशी खुशी बैठकर खाने लगा और घूट घूट करके शराब पीने लगा। शाम के साए उतर आए और बड़ा बाजार की बत्तियां जल उठी। छिड़काव से फिर एक बार सोधी सोधी मिट्टी की खुशबू आने लगी और फूलों के गजरों की खुशबू से मिलकर नत्थू के दिमाग पर अजीब मस्ती सी छाने लगी। नत्थू को मालूम नहीं था कि कब उसने फूलों का गजरा खरीद कर गले में डाल लिया था। उसे यह भी मालूम नहीं था कि कब यह देसी शराब की दुकान पर से उठकर राजा बाजार का खुला इलाका लांघ कर रंडियों वाली गली में जा पहुंचा था। तभी सहसा उसे सामने की ओर से मुराद अली आता नजर आया। घुटनों तक लंबा कोट, हाथ में पतली छड़ी, ठिगना, गठे शरीर वाला, काली काली मूछों वाला मुराद अली। क्या वह सचमुच मुराद अली था या नत्थू ख्वाब देख रहा था? उसकी आंखों के सामने मुराद अली एक प्रेत की भांत मर्राता सा नजर आया जो गली गली कूचा कूचा घूमता फिरता था, छड़ी झुलाता हुआ। क्या सचमुच मुराद अली नाम का कोई व्यक्ति भी है जो इस शहर में रहता बसता है या कोई प्रतिछाया ही एक गली से दूसरी गली घूमती रहती है और लोगों ने उसका नाम मुराद अली रख छोड़ा है? नहीं, मुराद अली ही था। मंडी की ओर से गली के रास्ते चला आ रहा था। नत्थू शराब की हिलोर में नहीं होता तो किसी के घर की चबूतरे की आड़ में छिप जाता, पर नत्थू के हौसले बढ़े हुए थे। वह सीधा गली के बीचों बीच आ गया। उसने ज्यादा नहीं पी रखी थी। चमड़ा रंगने वाले चमार के लिए दो कुल्हड़ शराब तो पानी के बराबर होती है। दिन भर अकेला घूमते रहने के बाद अब जाकर उसे कोई परिचित मिला था और सहसा नत्थू को गर्व का भास हुआ। हम जिस काम को हाथ में लेते हैं पूरा करके छोड़ते हैं। सलाम हुजूर, नत्थू ने आगे बढ़कर हंसते हुए कहा और तन कर खड़ा हो गया। मुराद अली छड़ भर के लिए ठिठका। उसकी पैनी आंखों ने नत्थू को देखा और सारी स्थिति उसकी समझ में आ गई। बिना कुछ कहे अथवा नत्थू के अभिवादन का बिना उत्तर दिए वह आगे बढ़ गया। सलाम हुजूर, मैं नत्थू हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? नत्थू कहकर हंस दिया। मुराद अली इस बीच आगे जा चुका था। नत्थू हतबुद्ध सा गली के बीचों बीच खड़ा रहा, फिर वहीं से चिल्लाकर बोला, हुजूर मुराद अली साहब। पर मुराद अली नहीं रुका। सहसा नत्थू के मन में एक विचार उठा, मुझे कम से कम मुराद अली को बता तो देना चाहिए कि मैंने उनका काम कर दिया है। वह इस मुगालते में तो न रहे कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ और उनका काम पूरा नहीं किया है। नत्थू लड़खड़ाता हुआ मुराद अली के पीछे हो लिया। आगे और ज्यादा अंधेरा था, मगर दूर मुराद अली की काया उसे बराबर नजर आ रही थी। वह गिरता पड़ता बढ़ता गया, जैसे तैसे वह भागने लगा था। हुजूर को बताना तो बहुत जरूरी है कि काम पूरा हो गया है, उसे लगा जैसे वह मुराद अली के नजदीक पहुंच रहा है। वास्तव में गली सूनी होती जा रही थी और उसे लगा जैसे मुराद अली ने अपनी चाल धीमी कर दी है। हुजूर मैं कहना भूल गया, वह काम हो गया था, वक्त पर भेज दिया था, हथगाड़ी वाले आ गए थे। तभी नत्थू ने देखा कि मुराद अली रुक गया है और अपनी छड़ी उठाए उसकी ओर देख रहा है। अभी मुराद अली उसकी ओर बढ़कर आएगा, मगर उसने छड़ी को ऊंचा क्यों उठा रखा है और वह कुछ भी बोलता क्यों नहीं? अंधेरी गली के एक सिरे पर दोनों खड़े एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। नत्थू ने फिर एक बार कहा, आपका काम हो गया था हुजूर, ठिकाने लगा दिया हमने। उसके कहने की देर थी कि उसे लगा मुराद अली फिर घूमकर आगे आगे जाने लगा है। कदम बढ़ाए आगे बढ़ता जाता है। गली के सिरे पर ढलान आ गई है और वह ढलान पर चढ़ता जा रहा है। नत्थू ने नजर उठाई, मुराद अली फिर दूर जा रहा था। गली में से निकलकर शिवालय की ओर जाने वाली ऊंची ढलान पर चढ़ता जा रहा था। पीठ पीछे नत्थू को फिर लगा जैसे कोई प्रेत बढ़ता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, लेकिन आंखों से ओझल नहीं हो रहा है। दरवाजा खोलने पर नत्थू को दहलीज पर खड़े देखकर नत्थू की पत्नी की जैसे जान में जान आई और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। तुम ऐसे नहीं किया करो जी, वह रोती हुई खाट पर जा बैठी। मेरा दिल डूब डूब रहा था, मैं सोचूं तुम गए तो कहाँ गए, यह अभी कोई तरीका है, परेशान कर दिया। साड़ी के पल्लू से आंख पोछकर वह उसकी ओर देखती रही और सहसा मुस्कुरा दी। यह क्या स्वांग बनाकर आए हो, कान में फूलों का गजरा लटका रखा था, किसके पास गए थे? मगर नत्थू चुप रहा और चुपचाप खाट पर जा बैठा। शराब पी है तो हंसते गाते क्यों नहीं हो? पहले जब पीते थे तो हंसते हुए घर लौटते थे। नत्थू अभी भी चुप बैठा था। तुम बोलते क्यों नहीं? तुम इतनी देर बाहर रहे, मैं मछली की तरह तड़पती रही हूँ। नत्थू ने आंख उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा, एक बाढ़ सी उसके दिल में उठी। सहसा उसने सिर झटक दिया, भाड़ में जाए मुराद अली और उसका सुअर। उसने मन ही मन कहा, हम तो घर लौट आए हैं। बाड़े वाले मेरे बारे में पूछते थे? हाँ पूछते थे, एक आध बार पूछा था। तुमने क्या कहा? मैंने कहा काम पर गए हैं, आते ही होंगे। क्या बार बार पूछते थे? नहीं जी, लोग काम पर जाते नहीं हैं। शाम को साथ वाली ने पूछा तो मैंने कहा घोड़े की खाल उतारे गए हैं। एक हल्की सी मुस्कुराहट नत्थू के होठों पर दौड़ गई। मगर तुम कहाँ गए थे, फिर बताऊंगा। नत्थू की पत्नी उसके मुंह की ओर देखती रही। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि नत्थू उससे कोई बात छिपा जाए, मगर चुप रहना बेहतर था। चुप रहूंगी तो कुछ दिन बाद अपने आप बता देगा। नहीं पूछूंगी, तुम नहीं चाहते तो नहीं पूछूंगी। खाना खाओगे? मैं अभी मिनटों में गरम गरम रोटियां सेक देती हूँ, चाय के साथ रोटी खा लो। और वह खाट पर से उतर आई, पर किसी भावावेश में नत्थू ने उसे रोक लिया और अपनी ओर खींचकर अपने पास बैठाए रखा। नहीं तुम इधर ही बैठो, पत्नी उसके साथ सट कर बैठी रही। तुमने खाना खाया? नत्थू ने भावावेश में उसके बाल सहलाते हुए पूछा। हाँ खाया। पत्नी को नत्थू का व्यवहार अनोखा सा लगा। झूठ बोलती हो, सच बता, खाना खाया? पत्नी ने आंख उठाकर हंसते हुए कहा, हमने बनाया था पर हमसे खाया नहीं गया। सुबह को खाया था या नहीं? खाया था। फिर झूठ? सच सच बता, खाया था? उसने फिर पति की ओर देखा और हंसती, नहीं खाया था, मैं तुम्हारी बाट देख रही थी। खाती कैसे? और जो आज रात ही मैं नहीं आता तो? आती क्यों नहीं? मुझे मालूम था तुम आओगे। कोई धूमिल और स्पष्ट सी आकुलाहट थी जो नत्थु के दिल को अभी भी मथ रही थी। इस दुखदुखी के कारण वह सड़कों पर चक्कर लगाता रहा था। इसी कारण उसने शराब पी थी। पत्नी के साथ बैठने पर भी अंदर ही अंदर कोई शंका उसका कलेजा चाट रही थी। सहसा नत्थू को खटका सा हुआ और उसे लगा जैसे मुराद अली दरवाजे के बाहर खड़ा है और उसकी छड़ी की नोक दरवाजे पर रखी है। उसका दिल धक से रह गया। फिर उसने मन ही मन अपने को आश्वासन देते हुए कहा, मुराद अली ने मुझे पहचाना नहीं होगा, वरना बात तो करता। चुपचाप चला गया। उसने जरूर यही समझा होगा कि कोई पियक्कड़ है जो नशे में धुत उसे परेशान करने आया है। आखिर 5 रुपए का नोट वह मेरे हाथ में देकर गया था। मैं जानती थी तुम्हें कोई क्लेश है, तुम खुश नहीं हो, इसलिए मैं घबरा गई थी। नत्थू ने घूमकर पत्नी को देखा, वह एकटक उसकी ओर देखे जा रही थी। लोग कहते थे शहर में गड़बड़ का डर है, किसी ने सुअर मारकर किसी मस्जिद के आगे फेंक दिया था। इससे भी मैं घबरा रही थी। मैं कहूँ कोई गड़बड़ हो गई तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढने जाऊंगी? नत्थू ठिठक कर पत्नी के चेहरे की ओर देखने लगा। कौन सा सुअर? कैसा सुअर? सुअर कैसे होते हैं? उसकी पत्नी हंसती। उसे भला लग रहा था कि नत्थू लौट आया है। वह चाहती थी कि दोनों बैठे रहें और इसी तरह बतियाते रहें। काला था या सफेद? नत्थू ने पूछा। उसके कान पत्नी के उत्तर की ओर लगे हुए थे। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने देखा था? मैं सुअर देखने जाऊंगी क्या? मुझे क्या पड़ी है? बाड़े में किसने देखा है? तुम भी कैसी बातें करते हो जी, बाड़े के लोग सुअर देखने जाएंगे? सुनी सुनाई बात लोगों ने कह दी। रात गहराने लगी थी। आसपास की कोठरियों में से आवाजें आना लगभग बंद हो चुका था। बाहर सोओगे या अंदर? पत्नी ने कनखियों से पति की ओर देखते हुए पूछा। क्यों, तुम्हारा क्या भरोसा? बाहर सो रहे हो तो उठाकर अंदर ले आते हो। हमने सोचा पहले ही पूछ लें, जो तुम्हारी नीयत खराब हो तो पहले ही अंदर पड़े रहें। अंदर उमस बहुत है। और वह बैठी बैठी अपनी बाल खोलने लगी। तुमने कुछ नहीं बताया, खाना खाओगे या नहीं? चाय बना दूं? इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? कल तुम नहीं थे, घर काटने को दौड़ता था। पत्नी को लापरवाही से बाल खोलते देख वेदना भरी उन्माद की लहर नत्थू के तन बदन में उठी और उसने पागलों की तरह अपनी पत्नी को बाहों में भर लिया और उसके गाल, उसके होंठ, उसके बाल, उसकी आँख बार बार चूमने लगा। यह भावावेग उत्तरोत्तर बढ़ता गया और उसका रोम अपनी पत्नी के गदराए और उसकी उत्तेजित सांसों में खोने लगा। मैं 3 बार रोई हूँ आज के दिन। बरामदे में खड़ी घंटों तुम्हारी राह देखती थी, फिर अंदर आकर रो देती थी। मुझे लगता था जैसे अब तुम लौट कर नहीं आओगे। पत्नी की आलिंगनों में नत्थू खोता जा रहा था, दीन दुनिया को भूलता जा रहा था। तभी मैदान के पार कुत्ते जोरों से भूखने लगे और दूर कहीं से दबा दबा सा शोर कानों में पड़ने लगा। नत्थू को किसी बात का होश नहीं था, पर कुछ ही देर में नत्थू की पत्नी की नज़र छत के नीचे दीवार पर पड़ गई। रोशनदान के सामने की दीवार पर हल्की सी रोशनी थिरक रही थी। लगा जैसे कोई लाल सी छाया नाचने लगी है। उसे लगा जैसे दीवार पर पड़ने वाली रोशनी कांप रही है। दूर से दबा दबा शोर सुनाई देने लगा। यह क्या है जी? दीवार की ओर देखते हुए पत्नी बोली। वह देखो तू दीवार पर, यह कैसी रोशनी है, लगता है जैसे आग की लपट हो। कहीं आग लगी है क्या? सुनो तो यह शोर कैसा है। नत्थू ने सिर उठाकर देखा तो एक हल्की करासी उसके मुंह में से निकली। कुत्ते और भी ज्यादा जोर से भूखने लगे थे और दूर का शोर बढ़ने लगा था। उसकी अस्फुट सी गूंज वातावरण में फैल रही थी। बढ़ते आते लश्करों की आवाज की तरह दीवार के ऊपरी हिस्से में लौ और भी ज्यादा अस्थिर और भी ज्यादा गहरी हो उठी थी, मानो आग के हिलते साए हों। कहीं आग लगी है, उसने भर्राई से आवाज में कहा और उठ बैठा। तभी भिनभिनाते शोर के ऊपर तैरती सी किसी घड़ियाल के बजने की आवाज आई। दोनों के लिए नई सी आवाज थी। यों हर रोज ही शेखों के बाग में लगी घड़ी की आवाज आया करती थी। चौके से निपटने के बाद जब नत्थु की पत्नी आती और दोनों सोने की तैयारी कर रहे होते और घंटा बजता तो पत्नी अक्सर 10 गिना करती थी, कभी कभी 11 भी सुनने को मिलते। पर यह शेखों की घड़ी की आवाज़ थी, किसी घड़ियाल के बजने की आवाज़, जिसे नत्थु ने भी पहले कभी नहीं सुना था। घड़ियाल बराबर बज रहा था और बढ़ते शोर में उसकी टुनटुनाती आवाज़ कभी साफ सुनाई देती, कभी थोड़ी देर के लिए डूब जाती थी, फिर आवाज़ के ऊपर तैरती हुई सी उसके कानों तक पहुंच जाती। दूर का शोर बढ़ता जा रहा था। बाड़े के अंदर से कोठरियों में से आवाज़ें आने लगी थीं। लोग जाग जाग कर कोठरियों के बाहर आ रहे थे। मंडी में आग लगी है, कोई आदमी जोर से चिल्लाया। तभी सहसा कहीं दूर से आवाज़ें आईं। आवाज़ बहुत ऊँची थी, बहुत साफ थी। अल्लाह हो अकबर! नत्थु का शरीर सिर से पांव तक झनझना उठा। वह आंखें फाड़े छत की ओर देखे जा रहा था। लगता था जैसे उसे लकवा मार गया हो।